मसारिफ में चौथा मसरफ मुअल्लफतुल कुलूब है, ये ज़कात का चौथा मसरफ है। ये वो लोग हैं जिनकी दिलजोई के लिए उनको सदक़ात दिए जाते थे। आम तौर पर यह बयान किया जाता है कि उनमें तीन चार किस्म के लोग शामिल थे, कुछ मुसलमान, कुछ गैर मुस्लिम, फिर मुसलमानों के बाद तो वो लोग थे जो गरीब हाजतमंद भी थे और नौ मुस्लिम भी। उनकी दिलजोई इसलिए की जाती थी कि इस्लाम पर पुख्ता हो जाए, और बाज वो थे जो मालदार भी थे और मुसलमान हो गए थे मगर अभी तक ईमान का रंग उनके दिलों में रचा नहीं था, और बाज़ वो लोग थे जो ख़ुद तो पक्के मुसलमान थे मगर उनकी कौम को उनके ज़रिए हिदायत पर लाना और पुख्ता करना मकसूद था। और गैर मुस्लिमों में भी कुछ वो लोग थे जिनकी शर से बचने के लिए उनकी दिलजोई की जाती थी, और बाज़ वो थे कि जिनके बारे में ये तजर्बा था कि न तबलीग व तालीम से असर पज़ीर होंगे न जंग व तशद्दुद से, बल्कि एहसान व हुस्न सलूक से मुतासर हो जाएंगे। रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये चाहते थे कि खल्क़ खुदा को कुफ्र की ज़ुल्मत से निकाल कर नूर ईमान में ले आए, इसलिए कि हर वो जायज़ तदबीर किया करते थे जिससे ये लोग मुतासर हो सके। ये सब किस्में आम तौर पर मुअल्लिफतुल कुलूब यानी जिनकी तालीफ़ कल्ब की जाती है उसमें दाखिल समझी जाती है, जिनको सदक़ात का चौथा मसरफ इस आयत में करार दिया गया है। इनके मुतालिक जो बताया जा चुका कि ये वो लोग हैं जिनकी दिलजोई के लिए उनको सदक़ात से हिस्सा दिया जाता था। आम ख्याल के मुताबिक उनमें मुस्लिमों गैर मुस्लिम दोनों तरह के लोग थे। गैर मुस्लिमों की दिलजोई इस्लाम की तरगीब के लिए और नौ मुस्लिमों की दिलजोई इस्लाम पर पुख्ता करने के लिए की जाती थी। आम तौर पर मशहूर ये है कि उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में एक ख़ास इल्लत और मसलहत के लिए, जिसका जिक्र अभी आ चुका, सदक़ात दिए जाते थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जबकि इस्लाम को मादी क़ुव्वत भी हासिल हो गई और कुफ़ार के शर से बचने या नौ मुस्लिमों को इस्लाम पर पुख्ता करने के लिए इस तदबीर की ज़रूरत न रही तो वह इल्लत और मसलहत ख़त्म हो गई, इसलिए उनका हिस्सा भी ख़त्म हो गया, जिसको बास फ़क़हा ने मनसूख हो जाने से ताबीर किया। फारूक आज़म, हज़रत हसन बसरी, शाबी, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक की तरफ यही कौल मंसूब है, और बहुत से हज़रात ने फरमाया कि मुअल्लफतुल क़ुलूब का हिस्सा मनसूख नहीं बल्कि सिद्दीक़ अकबर और फारूक आज़म के ज़माने में उसको साक़त करने का मतलब ये है कि ज़रूरत न रह जाने की वजह से उनका हिस्सा साक़त कर दिया गया। आइंदा किसी ज़माने में फिर ऐसी ज़रूरत पेश आ जाए तो फिर दिया जा सकता है। इमाम ज़ुहरी, काजी अब्दुल वहाब इब्न अरबी, इमाम शाफी और इमाम अहमद का यही मज़हब है, लेकिन तहक़ीकी और सही बात यह है कि गैर मुस्लिमों को सदक़ात वगैरह से किसी वक्त किसी ज़माने में हिस्सा नहीं दिया गया और न वो मुअल्लफतुल क़ुलूब में दाखिल हैं जिनका जिक्र मसारिफ़ सदक़ात में आया है। इमाम क़ुरतुबी ने अपनी तफसीर में उन सब लोगों के नाम तफसील के साथ शुमार कर दिए हैं जिनकी दिलजोई के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मद सदक़ात से यानी ज़कात से हिस्सा दिया, और ये सब शुमार करने के बाद फरमाया कि वह बिल जुमलती फ़कुल्लुहुम मुमिनुन वलम यकुन फ़ीहिम काफिर, यानी वो तमाम के तमाम मुसलमान थे जिनकी तालीफ़ कल्ब के लिए पैसा दिया गया और कोई उनमें से काफिर न था। इसी तरह तफसीर मज़हरी में है कि लम यस्बुत अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आता अहद मिन अल-कुफ़ार इलाफ़ी शैअन मिन अज़्ज़का, ये बात साबित नहीं है किसी भी तरीके से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी काफिर को माले ज़कात में से उसकी दिलजोई के लिए हिस्सा दिया हो। इसकी तायीद तफसीर कशाफ की इस बात से भी होती है कि मसारिफ़ सदक़ात का बयान यहाँ उन कुफ़ार व मुनाफिकीन के जवाब में आया है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकसीम सदक़ात के बारे में एतराज़ किया करते थे कि हमको सदक़ात नहीं देते। इस आयत में मसारिफ़ सदक़ात की तफसील बयान फरमाने से मकसद ये है कि उनको बतला दिया जाए कि काफिर का कोई हक माल सदक़ात में नहीं, अगर मुअल्लफतुल क़ुलूब में काफिर का भी हक दाखिल हो तो इस जवाब की ज़रूरत न थी। तफसीर मज़हरी में इस मुगालते को भी अच्छी तरह वाज़े कर दिया गया है जो बाज़ रिवायत हदीस के सबब लोगों को पेश आया, जिनसे साबित होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ गैर मुस्लिमों को कुछ अतियात दिए। चुनाचे सही मुस्लिम और तिरमिज़ी की रिवायत में जो मज़कूर है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़वान बिन उमैया को काफिर होने के ज़माने में कुछ अतियात दिए, उसके मुतालिक इमाम नववी रहमहुल्लाह के हवाले से तहरीर फरमाया कि ये अतियात ज़कात के माल से न थे बल्कि ग़ज़वा हुनैन के माल गनीमत का जो खुम्स बैतुल माल में दाखिल हुआ उसमें से दिए गए थे, और ये ज़ाहिर है कि बैतुल माल की इस मद से मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों पर खर्च करना बइत्तिफ़ाक़ फ़ुक़हा जायज़ है। फिर फरमाया कि इमाम बैहक़ी, इब्न सैयदुन्नास, इमाम इब्न कसीर वगैरह ने सब ने यही करार दिया है कि ये अताए माल ज़कात से नहीं बल्कि खुम्स गनीमत से था। इससे ये बात भी मालूम हो गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में अमवाल सदक़ात अगरचे बैतुल माल में जमा किए जाते थे, मगर उनका हिसाब बिल्कुल जुदा था और बैतुल माल की दूसरी मददात जैसे खुम से गनीमत या खुम से मादिन वगैरह, उनका हिसाब जुदा और हर एक के मसारिफ जुदा थे। जैसा कि हजरत फुकाहा ने तशरीह फरमाई कि इस्लामी हुकूमत के बैतुल माल में चार मद अलहदा अलहदा रहनी चाहिए, और असल हुक्म यह है कि सिर्फ हिसाब अलहदा रखना नहीं बल्कि हर एक मद का बैतुल माल अलग होना चाहिए ताकि हर एक को उसके मसरफ में खर्च करने की पूरी एहतियात कायम रहे। अलबत्ता अगर किसी वक्त किसी खास मद में कमी हो तो दूसरी मद से बतौर कर्ज लेकर उस पर खर्च किया जा सकता है। इन मददात की तफसील छोड़ दी जाती है, जिसको देखना हो वो मारिफुल कुरान की चौथी जिल्द में सूरह तौबा की आयत 60 के ज़ेल में देख सकता है। वल्लाहु आलमु बिस्सवाब।